6th of November 2004, my wife in Albuquerque, New Texas. Yali Madad. Albuquerque ki jamaat. Do dhai varsh ke baad aapki mulaqat hui. Aapko dekh ke khush hua. مولا آپ کو دین و دنیا میں آباد کرے, سکھی رہو, تندرست رہو, ایمان سے بھرے رہو, مولا سب طرح کی برکتیں دے وے, دسوں جی سکریتی بناوے. آج لیلۃ القدر ہے, اچھی طرح سننا. برس میں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ آدمی مجبوری نہیں لیکن محبت سے ساری رات جاگ کے عبادت کرے. ذکر جاگو بندگی مانگو, ذکر جاگو بندگی مانگو, کرو ذکر الہی, کھری دسوند گت نہ میلا, کھری دسوند گت نہ میلا, حاضر بیٹھا سائیں رے, تیرا سونا بھلیرا نہیں. مولانا حضر امام پر سوال پڑھوں گا. اے دین دارم, پہلا کوشچن آج کیا ہے؟ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر اللہ کہتا ہے تم لوگوں کو پتا نہیں. باعزرا کا لیلۃ القدر, تم لوگ نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. پھر جواب دیتا ہے کہ یہ جو لیل ہے, رات ہے, اللیلۃ القدر خیر من الف الشہر, یہ جو لیلۃ القدر ہے ایک ہزار مہینوں سے زیادہ اچھی ہے. مہینے ایک ہزار مہینے, تو مہینوں سے اچھی کا مطلب کیا؟ جو رات ہے وہ ایک ہزار مہینوں سے اچھی ہے, اس لیے اچھی ہے کہ رات میں بندگی ہوتی ہے. تو اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک ہزار مہینے تک بندگی کرتے رہو تو یہ لیلۃ القدر وہ ہزار مہینے کی بندگی سے یہ زیادہ اونچی ہے. کس بات میں؟ اگر اس رات کے اندر, مثال دیتا ہوں, اللہ کی تسبیح نکالو اور ہزار مہینے تک اللہ 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 کرتے رہو, تو یہ آج کی رات میں جو تسبیح نکالی وہ ہزار رات تک اللہ اللہ کرنے سے یہ رات کی اللہ اللہ بڑی ہے, زیادہ ہے. اس کے اندر پاور کی بات آتی ہے. پاور کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی طاقت, اتھارٹی. قدر کا مطلب بھی پاور ہے. قدر کہتے ہیں किसी चीज की वैल्यू करना। कद्र का मतलब यह है कि अथॉरिटी मिले। तो खुदा का कहना यह है, इस रात तुम जो कुछ करोगे वो हजार रात करने से ज्यादा अच्छा है, बेटर है। क्यों? खुदा कहता है कि इस रात तनजुलुल मलाइका, आसमान से फरिश्ते नीचे आते हैं, वर रूह, और खुदा की रूह खुदा के हुक्म से जमीन पे आते हैं, और सुबह तक इस सारी रात के अंदर वो अपने बंदों को खुदा की नेमतें देते हैं। थोड़ा पानी है। एक दाना कॉफी का खाया, मामला बिगड़ गया। आपसे माफी चाहता हूं, इसलिए कि आपकी ट्रैक को मैंने तोड़ दिया। दिनदारो, खुदा कहता है कि इस रात आसमान से फरिश्ते उतरते हैं खुदा के हुक्म से, और रूह उतरती है। 1400 बरस में हजारों तफसीर वालों ने, हजारों आलिमों ने इसमें बहस की है, रूह क्या है। रूह जो है, आज मैं आपको उसका खुलासा करूं, मोहम्मद का नूर। खुदा नूर है, और उसने अपने नूर से मोहम्मद के नूर को जुदा किया। बाज सुन्नी आलिमों ने रूह को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा है, लेकिन नहीं, बराबर नहीं, क्योंकि जिब्रील खुदा की रूह नहीं है। जिब्रील को खुदा ने पैदा किया है अपने नूर से, मगर मोहम्मद का दर्जा जिब्रील से ज्यादा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पे आए मेराज की रात को, अर्ज की, सेठ बुलाता है। अब स्टोरी इस तरह की है कि सफेद रंग का घोड़ा लेके आए, नबी करीम घोड़े पे सवार हुए, और जिब्रील अलैहिस्सलाम घोड़े को उसके ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को लेके आसमान पे गए। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, सातवें आसमान तक पहुंचे। जब इस सातवें आसमान की हद आ गई तो रसूल अकरम नीचे उतरे, पूछा जिब्रील को कि अब कहां जाऊं। फरमाया, आगे आप जाओ, मैं आगे नहीं आ सकता, मेरी हद हो गई। तो नबी करीम अकेले आगे गए, इसलिए रसूलुल्लाह का जो दर्जा है वो तमाम नबियों से, तमाम फरिश्तों से ऊंचा है। खुदा के सिवा मोहम्मद से ऊंचा और कोई नहीं। रसूल अकरम मेराज में आगे जाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम पीछे रह जाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम रूह नहीं है, रूह मोहम्मद है। इसलिए कि जो रूह है उसमें वो तमाम ताकतें जो खुदा में है, रूह और फरिश्ते। अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम रूह होते तो खुदा उसका नाम लेते, لیکن فرشتوں کے اندر جبریل بھی ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ خدا کے حکم سے جبریل اور خدا کی روح جو ہے وہ زمین پہ آتے ہیں. آپ کے دلوں میں ایک کوشچن آ رہا ہے, میں سن رہا ہوں, کیا محمد اگر روح ہے تو اس رات کو حضرت محمد اترتے ہیں تو باقی کی جتنی بھی ایئر میں رہتے ہیں اس میں محمد نہیں ہے؟ تو یہاں مطلب کیا ہے؟ اے مومنوں, انسان کے بدن میں سب سے قیمتی چیز روح ہے, روح خدا کا نور ہے, لیکن روح کو ایسنس بھی کہتے ہیں, ایسنس کو بھی روح کہتے ہیں. تو یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں مطلب یہ ہے کہ خدا کی بخشش جو محمد کے روپ میں آئی, خدا نے اپنی رحمت کو ایک انسان کی باڈی دی اور اس باڈی کا نام ہے محمد. تو محمد کی جو باڈی ہے, ظاہر کی باڈی, وہ تو دفن ہو گئی, لیکن اس کی جو نور ہے, محمد کا جو روح ہے, وہ دنیا میں موجود ہے ایمان کے قالب میں. یہاں روح سے مطلب خدا تعالی کی وہ رحمت کہ جو محمد کے تھرو سے لوگوں کو ملتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ فرشتے اور روح صبح تک آتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ ٹویلائٹ ہوئے, صبح لائٹ نکل آوے, پھر یہ معاملہ رات کا ختم ہو گیا. لیلت القدر میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کاسموس سے, لاکھوں کروڑوں مائل سے کاسموس میں جو انرجی ہے وہ انرجی زمین پہ اترتی ہے. جب وہ انرجی زمین پہ اترتی ہے, وہ لوگ کے جو کانشس ہیں یعنی جاگتے ہیں اور اس بات کے لیے امیدوار ہے, اس بات کے لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج خدا ان کو کچھ دے وے, تو ان کو وہ انرجی ریسیو ہوتی ہے. یہ رات قدر کی رات ہے, پاور کی رات ہے, اتھارٹی کی رات ہے. اس رات بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں, جو مانگو وہ ملے, سچ بات ہے, لیکن اللہ کا یہ کہنا کہ فرشتے اور روح اترتے ہیں یہاں اس لیے نہیں ہوتے کہ یا مولا وہ کینیڈا کی 649 ہے نا, اس کے اندر 12 ملین ڈالرز ہیں, مجھے مل جاوے تو کیا آج کی رات کو یہ مانگو گے کہ میں نے ادھر کل پڑھا کہ 44 ملین ہے. دنیا داری مانگتا ہے, مگر یہاں آج کی رات ان کے لیے, سب کے لیے نہیں, آج کی رات ان کے لیے ہے کہ جو خدا کو جاننا چاہتے ہیں, خدا سے محبت رکھتے ہیں. انہیں یہ بات کا خیال ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا, مر جاؤں گا, ایک دن خدا کے پاس جانا ہے. لیکن یاد رکھو مومنوں, یہ لازم نہیں کہ بوڑھے ہو کے ہی مرنا ہے, جوان بھی مرتے ہیں, بچے مرتے ہیں, ماں کے پیٹ سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں. موت کا کوئی وقت نہیں کہ یہ لازم 100 برس کا ہوئے تو ہی مرے, ایسا نہیں ہے. موت ہے وہ ایک اینڈ ہے حاضر دنیا کا. تو موت کے بعد کیا؟ موت کے بعد جو روح ہے وہ جدا ہو گئی, جیو جدا ہو گیا. جیو جو ہے وہ لائف فورس ہے, جیسے کہ ایک ٹری ہے, ایک پلانٹ ہے, उसमें लाइफ है, ग्रास है जमीन के ऊपर उसमें लाइफ है, लेकिन उसमें रूह नहीं। कुछ ऐसे एडवांस लेवल के जानवर हैं कि जिनमें रूह भी है, जीव भी है, लाइफ भी है। घोड़ा, बंदर, लायन, हाथी, ये जो हायर लेवल के जानवर हैं, इनमें इंटेलिजेंस है, इनमें रूह है। और इंसान तो सबसे सुप्रीम है खुदा की क्रिएशन में, खुदा ताला की सबसे जो खूबसूरत और आला दर्जे की क्रिएशन है वो इंसान है। इंसान में जीव है जो हार्ट में रहता है, इंसान में रूह है वो ब्रेन में जहाँ इंटेलिजेंस रहती है, तो इंटेलिजेंस की जो न्यूक्लियस है वो रूह है। जब मौत आती है रूह तो इमीडिएटली निकल जाती है, और रूह है वो पाक है, रूह जो है वो नूर है, रूह के अंदर कोई बुराई नहीं, गुनाह नहीं, क्राइम नहीं, प्योर प्योर नूर। ये जीव है कि जो गुनाह करता है वो गुनाह कराता है, खुशी भी इसको होती है, गमी भी इसको होती है। जीव हार्ट में रहता है, रूह के चले जाने के बाद जब ही हार्ट बीट बंद हो जाती है तो डॉक्टर लोग सर्टिफाई करते हैं ही इज डेड। लेकिन पीरों का कहना यह है कि वो अभी तक मरा नहीं, जीव अंदर है। हार्ट बंद हो गया, ब्रेन की फंक्शन बंद हो गई, मगर जीव अंदर है। ए दिनदारों, हमारी बॉडी के अंदर मोर देन ट्रिलियन सेल्स हैं। सेल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, आंख से नहीं दिखते, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए। सेल जो है इट्स ए लिविंग बीइंग, सेल में जीव है, और सेल की जो कंस्ट्रक्शन है वो एटॉमिक है। एटॉम के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और सर्टन डेवलप्ड एटम्स जो है उनमें एक और चीज है, न्यूट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरी चीज जो है कि जो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, न्यूट्रॉन। तो सेल जो है वो लिविंग बीइंग है, सेल के अंदर डायरेक्ट सेल में जीव है, और ये जीव हमारे शरीर में है। हार्ट बंद हो जाने के बहुत देर के बाद जीव निकलता है, हिसाब किताब जीव को देना पड़ता है। और जब ये रूह निकल जाती है तो इंसान के अंदर उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। जब जीव निकल जाता है तो आदमी की जो बॉडी है ना वो रॉट होती है, स्टिंक करती है, उसमें बास पैदा हो जाती है। ये जाहिर करता है कि नाउ देयर इज नो लाइफ। जब तक लाइफ अंदर है तब तक बॉडी मरती नहीं। मैं दो दिन पहले एक आदमी को मिलने गया कि जो 8 बरस से कोमा में पड़ा है, 8 बरस से खाना नहीं खा सकता, उसको आर्टिफिशियल तरीके से खाना देते हैं, अपनी सांस ले रहा है लेकिन कम्युनिकेबल नहीं, न सुनता है न देखता है। ये एक किस्म की मौत की स्टेट है, लेकिन वो मरा नहीं, जीता है, रूह भी है, जीव भी है, ब्रेन डिस्कनेक्ट हो गया। ये कंडीशन इंसान की जब मौत के वक्त आती है तो जीव की अकाउंटेबिलिटी होती है, जैसा कि इस आदमी की अकाउंटेबिलिटी हो रही है। जबान खुदा ने बंद कर दी, बोल नहीं सकता। अंदर उसको क्या सुख है क्या दुख है हम नहीं जानते। यही हालत इंसान की मौत के वक्त है कि मौत हो जाने के बाद भी, यानी हार्ट फेल हो गया, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, ब्रेन डेड हो गया, क्योंकि ब्रेन बहुत ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक जीता रह सकता है ऑक्सीजन के बगैर, वगरना ब्रेन मर जाता है। ऐसी कंडीशन में कि जब इंसान अंदर खाने अपने अकाउंट दे रहा है, उसको खुदा की वो रूह कि जिसको हमने मोहम्मद का नाम दिया, वो रूह इंसान की मदद करती है। तो खुदा ताला ने कहा, ए मोहम्मद, आप तमाम जितने भी क्रिएशन है, 18,000 यूनिवर्सेस हैं, आप रहमतुल आलमीन हैं, इन तमाम क्रिएशन के लिए आप रहमत हो, यानी आपके इंटरसेशन से, आपके कहने से, आपकी रिकमेंडेशन से खुदा मुआफ कर देगा। ये जो रूह है, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है, इस रूह का खुदा जिक्र करता है। और फरिश्तों का क्यों जिक्र किया? फरिश्तों का जिक्र इसलिए किया कि फरिश्ते जो हैं, अल्लाह ताला कुरान में उनको इस तरह पुकारता है, एक तो है मलाइकतुल मुकर्रबीन, वो फरिश्ते कि जो खुदा के हुजूर में रहते हैं, जैसे हजरत जिब्राइल हैं, हजरत इसराफील हैं, हजरत महकाईल हैं, हजरत इस्माईल हैं, हजरत अज़राइल हैं, ये मुकर्रबीन हैं खुदा के नजदीक रहने वाले। लेकिन और दूसरा ग्रुप है फरिश्तों का, जिसको खुदा ताला ने इस तरह से कहा है कि वो मुदब्बरातुल अम्र, खुदा का हुक्म मानने वाले, जैसे कि ऑर्डरली लोग खड़े होते हैं। सेठ कहता है, ए फलाने, जी सरकार, पानी लाओ, तो वो ला के पानी ले आता है। ऐसे फरिश्ते कि जो खुदा का हुक्म उठा के उस प्रमाणे, उस हिसाब से अमल करते हैं। मेरे हाथ में एक ऐसी किताब आ गई कि जिसके अंदर जिस तरह हिंदू लोगों ने जुदी जुदी किस्म के फरिश्तों को देवता कहा है, यानी अग्नि देवता, आग का देवता, यहां देवता का मतलब है फरिश्ता, पानी का फरिश्ता, हवा का फरिश्ता, हिंदुओं ने इस तरह से जुदे जुदे फरिश्तों के नाम दे रखे हैं। अभी मुसलमानों ने डीप स्टडी नहीं की कुरान की, तो उन्होंने ये इन हिंदुओं को बुरी नजर से देखना शुरू कर दिया। इसके अंदर बहुत समझने जैसी चीजें हैं। आज से 2000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, जीसस, उनके साथ एक और नबी थे, हम उनको हजरत यहया कहते हैं, और बाइबल की लैंग्वेज में उनका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। उनके जमाने में 5 नबी एट ए टाइम थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, इब्राहिम के टाइम के अंदर भी ऐसे 4-5 नबी एट ए टाइम हुए। 2000 साल पहले एक ऐसा ग्रुप था ज्यूज के अंदर कि जिनको एसीन्स कहते थे, फारसी उर्दू के अंदर उसको एसनीज कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एसीन्स। ये लोग सफेद कपड़े पहनते थे, 3 वक्त की दुआ पढ़ते थे, नियाज पीते थे, रात की इबादत करते थे, 24 घंटे में 1 वक्त खाना खाते थे, और इतना उनका डिसिप्लिन्ड ग्रुप था, और इसी उनकी लाइफ थी कि ये लोग आम दुनिया से स्पिरिचुअली बहुत एडवांस हुए। उस वक्त इन लोगों की जो लिटरेचर की चीजें हाथ आई हैं आज, तो उनके अंदर भी उन्होंने खुदा ताला की बहुत सी कुदरत की जो निशानियां हैं उनको फरिश्ते कहा है, आग का फरिश्ता, हवा का फरिश्ता। तो हिंदुओं में से उन्होंने नहीं सीखा। हिंदुओं की ये थियोलॉजी जो है वो एसेंस की थियोलॉजी से बहुत पुरानी है, लेकिन उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। मैंने ये बात इसलिए आपको निकाली है कि खुदा ताला हर जमाने के अंदर उसका मजहब एक ही रहा। मैं आपको एक अजायब चीज कहूं कि 10 अवतार कुरान में उसका जिक्र है। हम लोग और हमारे स्कॉलर्स ये समझते रहे कि 10 अवतार तो ये हिंदुओं की बातें हैं, लेकिन कुरान शरीफ में खुदा ताला ने इशारे से 10 अवतार का नाम जिक्र किया है। जब उसको इलेबोरेट करो तो हमको नई नई चीजें मिलती हैं। इल्म की कोई हद नहीं। कुरान अच्छी तरह से पढ़ने वाले है ही नहीं। हमारे मुसलमान भाइयों ने 5 वक्त की नमाज ले ली, रोजा ले लिया, कुरान की तिलावत करते हैं, समझे बगैर के उसका सवाब मिले, बाकी कुरान में क्या लिखा है। मौलाना सूत्र में मच्छर फरमाते हैं कि कुरान का इल्म तुमको गिनानों में मिलेगा, क्योंकि गिनान जो है वो कुरान की तफसीर है, इंटरप्रिटेशन है। खुदा ताला कहता है अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते और रूह जमीन पे नाजिल होते हैं, नेमतें लेके आते हैं, बख्शिशें लेके आते हैं, गुनाह मुआफ कराते हैं। आज इस रात के अंदर अपनी रूहानियत को ऊंचा उठाने के लिए इबादत करो। अभी हमको मालूम नहीं, अल्लाह का रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं कि सारी रात जो है मुबारक रात है, शाम को 6 से सुबह 6 तक। लेकिन इस रात में एक ऐसा वक्त आता है कि जब खुदा बहुत नजदीक होता है और बख्शीशें देता है। मिसाल के तौर पे कि एक बादशाह है और उसने सोचा कि मैं बख्शीशें दूं, गोल्ड मोहर की इस तरह भरे हुए थाल पड़े हैं और एक एक को बुला के मुट्ठी भर के देता है। ऐसा ही इस रात के अंदर एक ऐसा वक्त आता है कि खुदा बांगे बगैर सबको बख्शीश देता है, लेकिन उस वक्त उसको खुदा के पास हाजिर होना चाहिए, यानी वो खुदा के ध्यान में होना चाहिए। इन 12-11 घंटों के अंदर 10 बजे है, 12 बजे है, सुबह 2 बजे है, हमको पता नहीं, लेकिन बैठे रहो, इबादत करते रहो। ऐसा वक्त आ जाएगा कि जब तुमको रूहानी बख्शिश मिलेगी। हो सकता है कोई ऐसी मुराद के जो आदमी बहुत अरसे से मांग रहा है वो मुराद उसकी पूरी हो जाए। मैं अपना एक जिक्र करूं, ऐसी ही एक रात बंबई की बात है, मेरी जवानी का टाइम था, मैंने एक मुराद, रूहानी चीज थी, दुनिया की चीज नहीं थी, एक मुराद मांगी। वो मुराद मांगता रहा। मेरे दिल में कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई कि इतने टाइम से मांगा छोड़ दूं। अभी एक बरस निकल गया, 2 बरस निकल गए, 3 बरस निकल गए, 9 बरस के बाद मुझे वो चीज मिली, एक आला दर्जे की रूहानी चीज थी। ये मैंने मिसाल ये मिसाल इसलिए दी, भीख मांगते रहो, जब चाहे सेठ देगा। इसमें ना उम्मीद, निराशा, डिस्पोंडेंट नहीं बनना, ओह इतनी देर से मांगा कुछ दिया नहीं, चलो छोड़ दो। नहीं, छोड़ना नहीं, 10 बरस भी निकल जाए मांगते रहो, देगा। तो क्यों इतना सताता है? तुम्हारे अंदर की रूहानी हालत को देखने के लिए, तुम्हें कितना यकीन है ये देखने के लिए। हजरत याहिया जो थे वो हमेशा रोते रहते थे, उनका नाम पड़ गया रोने वाले नबी। क्या मांगते थे? खुदा की जुदाई खत्म हो जाए, खुदा का दीदार मुलाकात होवे। नबी थे, रसूल नहीं थे, खुदा की मुलाकात चाहते थे। फरिश्ता आया, कहता है नबी, खुदा कहता है क्या चाहते हो? तू मेरा नबी है, दोजख तेरे लिए हराम, जन्नत तेरे हाथ में है, क्या चाहते हो? कहा मैं तुझे चाहता हूं, यानी मुझे खुदा चाहिए। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह कहता है रोते रहो, जब उसे राजी होगा तब वो देगा। और जिंदगी भर हजरत याहिया रोते रहते थे। ये रोना खुदा की जुदाई के अंदर था। हमारे गिनानों के अंदर भी जुदाई का बहुत जिक्र है, जैसे कि यही गिनान जिसको हम वेंती कहते हैं, बड़ी वेंती पीर हसन कबीर दीन की, असल हमारा स्वामी तमें जुदा पड़या थई रूप, मेहर करो मेरा सानिया। या मौला, मैं तेरे नूर में से जुदा हुआ हूँ और मैं वापस तेरे नूर में मिलना चाहता हूँ, तू मेहरबानी कर कि तू मेरी मुलाकात कर। असल हमारा स्वामी तमें, तेरे मेरे अंदर जो जुदाई पैदा हो गई ये बंद हो जाए। इबादत के अंदर सबसे आला दर्जे की चीज जो बख्शीश है वो खुदा की मुलाकात है, खुदा ताला का दीदार है। मैं भी आपको कह रहा था, हार्ट में जीव रहता है, ब्रेन में आत्मा रूह रहती है, इन दोनों की मुलाकात नहीं होती। लेकिन जो हम अच्छे आमाल करें, इबादत करें, गुनाह से बदियों से बचते रहें, तो ये जो जीव है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा उठता है, इसमें नूरानियत लाइट पैदा होती है और रूह के नजदीक आता है। एक दिन ऐसा आ जाए कि हार्ट में से जीव निकल के ऊपर जाके रूह के साथ मिल जाए, उसी वक्त उसकी मौत हो जाएगी। मगर ये कैसी मौत होगी पता है? हम कहते हैं असल में वासल हो गया, क्योंकि रूह है वो नूर है और जीव जो है वो आकाशी है, यानी एक स्पिरिट की तरह है। इन दोनों की मुलाकात का नाम ही असल में वासल होना है। इस्माइली मजहब के अंदर ये एम है कि हम मौत के वक्त खुदा के नूर में मिल जाएं। ललतुल कदर हमारी रूहानी हालत को ऊंचा उठाने के लिए है। ललतुल कदर हमको एक चांस दिया गया है बरस में एक दफा कि एक तस्बीह निकालो तो 1000 महीने तस्बीहां निकालते रहो, इतना उसका फायदा है। 1000 महीने में 1000 महीने में 30,000 दिन है, 30,000 रातें हैं, तो ये 60,000 दिन रात तस्बीहां निकले हैं, तो ये आज की रात के बराबर नहीं, इससे भी कम है। तो भी अगर ये हम अरिथमेटिकली इक्वेशन का ध्यान रखें तो आज जो आदमी एक दफा अल्लाह कहे तो उसको 60,000 टाइम सवाब मिलता है। इस रात को ध्यान लगाओ, और अपना स्टॉक लो। यहां स्टॉक लेने से मेरा मतलब यह है, मैं झूठ बोलता हूं? हाँ, नहीं बोलता। कुछ ना कुछ जवाब जरूर मिलेगा। हमारे तमाम अमाल हमारी कॉन्शियस में रिकॉर्डेड है। मैंने किसी का माल खाया है? हाँ खाया है। मैंने किसी के ऊपर आरोप लगाया है, झूठा ब्लेम दिया उसको? दिया है। हमारे अंदर सब रिकॉर्ड है। आज रात को वो रिकॉर्ड निकालो और अपना हाल देखो, मैंने क्या क्या गुनाह किए हैं इंसान को पता है। अभी इन गुनाहों के सामने जो हम याद करके अपनी कॉन्शियंस को जगाते हैं दीनदारों, हमारे अंदर शर्म पैदा होती है। और जब शर्म पैदा होती है तो हमको उसके ऊपर पशेमानी होती है, रिपेंटेंस होती है, हम पछताते हैं। ये पछताना खुदा को बहुत पसंद है। अपने गुनाहों को याद करके, अपनी वीकनेस के ऊपर, अपनी भूल के ऊपर जो आदमी शर्मिंदा होता है, खुदा ताला को ये चीज बहुत पसंद है। और ये हालत खुदा ताला उसके गुनाह बख्श देता है। ये बात आज पैदा हो सकती है, क्योंकि आज रात 10-20 मिनट की नहीं, सारी रात पड़ी है। और इस रात अपने हालत को देख के जो अगर हम सुधर जाएं और कल से हमारा अमल अच्छा हो जाए, हमारे विचार अच्छे हो जाएं, हमारे अंदर रूहानियत पैदा हो जाए, पाकीजगी पैदा हो जाए, तो नूर हमारे नज़दीक आ जाएगा। बदियां बुराइयां दूर करने का नाम ही इबादत है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि तुम रात को इबादत करो, दिन को गुनाह करो, ये तो शैतान की इबादत है। इस्माइली मजहब रूहानी मजहब है। हमको नूर की बख्शिश देने के लिए बहुत से दरवाजे खुले किए हैं हमारे मौला ने। ये 23वीं रमजान की तरह, जिस तरह के हजरत रसूल अकरम गुफा में बैठे थे रमजान महीने में, 22वां रोजा पूरा हो गया, 23वीं रात शुरू हुई। मैं आपको ये कहूं कि रसूल पाक रमजान महीने में रोजे रखा करते थे, लेकिन ये खास जो ईयर था जब उनको नबूवत मिली, 40 बरस की उम्र थी, तो उस वक्त 30 दिन तक मोहम्मद पाक मुस्तफा ने न खाना खाया है, 30 दिन तक कंटिन्यूसली। ये आम रोजे रमजान की रोजे जैसे रोजा नहीं था, रमजान के रोजे बनाए गए, खुदा ने हुक्म किया, उसके पहले की बात है। ये नबूवत के जाहिर करने से पहले की बात है। 30 रात को नबी सोए नहीं, 30 दिन तक सारा महीना खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, नींद नहीं की। तो ये 30वीं रात थी जो 23वीं रात है रमजान की। इस रात को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और ये रात को ये दर्जा मिला। रमजान की 23वीं रात मुकर्रर की गई उम्मत के लिए, मोहम्मद की मारिफत से उम्मत के लिए ये रात मुकर्रर हुई कि आए नबी अपनी उम्मत को कहो कि आज की रात को उठ के सारी रात इबादत करो तो मैं उनको नूर की बख्शिश दूं। ऐ मोमिनों, आज की जो रात है, अगर दुनिया की कोई चीज मांगनी है भले मांगो, छोटा बच्चा है 4-5 बरस का तो वो खिलौने मांगेगा, रमकड़े मांगेगा, टॉयज मांगेगा, लेकिन 25 बरस का जवान लड़का है, बाप उसको पूछे तो तुझे क्या चाहिए, तो वो नहीं कहेगा कि मुझे एक टॉय ले दो, वो कहेगा मुझे गाड़ी ले दो, 50,000 की गाड़ी ले दो। तो इसी तरह से आज की रात दुनिया की कोई चीज मांगने में गुनाह नहीं है, लेकिन ये टॉय की तरह है, बचपना है। रूहानी चीज मांगो, और रूहानी चीज मांगने से ये होगा कि दुनिया की चीजें खुद ब खुद आएंगी। अपनी रूहानी ताकत को ऊंचा उठाओ, अपनी रूहानी ताकत में एनर्जी पैदा करो, अपने अंदर नूर की कुव्वतें जमा करो, अपने अंदर खुदा की नजदीकी करो, अपने अंदर जो रूहानी ताकत है उसकी वजह से आप दुनिया के अंदर सुखी बनोगे। इबादत करने वाले लोगों की तंदुरुस्ती दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छी होती है, उसको दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ती कि जितनी लोगों को पड़ती है कि जो इबादत नहीं करते। इबादत से ख्याल विचार पाक बनते हैं, उसको फैसला करने के लिए डिसीजन लेने के लिए खुदा कुव्वत देता है। कल क्या होने वाला है उसको इस बात के लिए खुदा पहले से इंटीमेशन देता है, उसको इंस्पायर करता है। नूरानी चीजों से हमें दुनिया भी मिलती है, दीन भी मिलता है। आज की इस रूहानी नूर से भरी हुई रात को आराम से बैठ के आंखें बंद करके जितना बन सके उसको याद करो। हज़रत इमाम ने हमें तीन तस्बीहें अभी भी हाल में 4-5-10 बरस के अंदर कि तुम या अल्लाह करो, या अली करो, या मोहम्मद करो, पीर शाह का जाप करो, उसको या रब कहो या खालिक कहो, कितने नाम है उसके, जिस नाम से चाहो उसको याद करो। लेकिन हज़रत इमाम ने जो हमें ये तीन तस्बीहें दी इसका जिक्र खूब करो। खुदा के 99 जो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी भी तस्बीहें निकालो, अपने आप को इसमें बिजी रखो आज की रात को, ताकि खुदा आपके ऊपर राजी होवे और आपकी नूरानी कुव्वत को बढ़ावे, आपके अंदर हिम्मत पैदा होवे। मैं अभी अभी गए हफ्ते में 10 दिन में मैं वाज़ें करता रहा, मैंने जमात को कहा कि वो लोग के जो रूहानियत में कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर उनको डिप्रेशन होती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनकी उम्मीद टूट जाती है। मैंने इस 10 दिनों के अंदर एटलीस्ट 30-35 आदमियों को, अपने इस्माइलियों को, जमात खानों के अंदर मुझको मिलते रहे 30-35 जनों को डिप्रेशन रही, औरत भी थे, मर्द भी थे, जवान भी थे। डिप्रेशन का कारण एक ही है, जिसका ईमान खराब हो जावे उसको डिप्रेशन होती है। क्यों? जो डिप्रेस्ड है वो ये समझता है मेरा कोई नहीं, जो डिप्रेस्ड हो गया वो दूसरे की बात कभी नहीं मानेगा, उसको दवा खिलाओगे कभी कबूल नहीं करेगा कि मैं बीमार हूं। जो डिप्रेस्ड हो गया है, निराश हो गया है, डिसअपॉइंटेड हो गया है, डिसहार्टन्ड हो गया है, और अगर ये डिप्रेशन, क्योंकि वो हर वक्त सोचता रहता है मेरा कोई नहीं, एक दिन ऐसा हो जाता है कि सुसाइड कर लेता है। डिप्रेशन की एक्सट्रीम ये है, आपघात कर लेता है। उसका एक ही रीजन है, ईमान कमजोर हो गया। जो ईमानदार है उसके ऊपर कितना भी दुख आ जावे वो ये समझता है कि मेरा मौला बैठा है, मेरी मदद करेगा, वो राजी खुशी से दुख उठा लेता है, लेकिन वो डिप्रेस्ड नहीं होता। ये चीज रूहानियत की है। इबादत करने से इंसान के अंदर ये ताकत पैदा होती है कि वो दुनिया के दुखों के सामने निराश नहीं होता, उसको डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल खराब नहीं करता, वो डटा रहता है, हिम्मत के साथ बैठा रहता है, आज नहीं तो कल मेरा मौला बैठा है। ये एटीट्यूड रूहानी एटीट्यूड है और इबादत से मिलता है, उसके अंदर हिम्मत और ताकत रहती है, उसके शॉक एब्जॉर्बर्स मजबूत है, इसलिए रोड के अंदर जो ऊंची नीचे खड्डे खबोचियां हैं उसको फील नहीं होते, वो दुखी नहीं होता। अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए आज की रात बहुत काम करती है, क्योंकि आज एक्स्ट्रा बोनस है, एक करोगे तो 60,000 टाइम उसका ज्यादा इवज मिलेगा। इस रात के अंदर फायदा उठाना चाहिए। ए मोमिनों, मैं आपको एक आवाज और भी सुनाऊंगा, वो रूहानी तरीके की आवाज होगी, लेकिन इस वक्त मैंने आपको लैलतुल कदर क्या है, किस वजह से खुदा ने हमको ये मौका दिया और इसमें से हम क्या फायदा उठा सकते हैं, मैंने आपको ये चीज बताई है। आज की रात खूब इबादत करो, आंखें बंद करके मौला को सामने हाजिर समझ के उसको याद करो, तस्बीहें निकालो, जिक्र करो। लाजिम नहीं कि हाथ में तस्बीह रखो, क्योंकि आज कुछ काउंटिंग की बात भी नहीं है, सिवा के चंद ऐसी तस्बीहें हैं कि जो 100 दाने की है, 101 दाने की, 40 दाने की, लेकिन जो जिक्र है और वो पर्टिकुलरली खुदा के नामों का जिक्र है, आज खूब करो, खूब करो, उसको याद करो। 60 दफा करो, 600 दफा करो, 5 दफा करो, 500 दफा करो, उसका जिक्र करो, जो भी नाम याद आवे नाम रटन करते रहो और उसको इस तरह से फील करो कि जैसे मौला सामने बैठा है। सुखिया बाद रहो, मौला आपकी नकुबतें पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, रूहानी कुव्वत देवे, रूहानी बख्शिश देवे, नूर से आपकी मदद करे, नूरानी बख्शिश देवे। मौलाना हजर इमाम आपको इबादत का शौक देवे, बदियों बुराइयों गुनाहों से बचावे। सुखिया बाद रहो, ऐ जन्नत।